अक्षर प्रत्येक चरण यानी चारों चरण में है। एक थोड़ा सा आप इसको सुधार लेना कि अनुष्टुप छंद का जो लक्षण लिखा है उसमें लिखा है कि दूसरे और चौथे चरण का दूसरा वर्ण लघु हो, उसमें लिख लीजिएगा आप सातवां वर्ण सातवां अक्षर लघु हो। ये थोड़ा प्रूफ की मिस्टेक रही है। तो उसी के अनुसार हर श्लोक का लक्षण हर श्लोक के अंदर घटित होता है। तो अब अनुष्टुप छंद के अंदर आपने भगवान के गर्भ कल्याणक की तिथि जान ली, आषाढ़ कृष्णा द्वितीया, और जन्म कल्याणक चैत्र कृष्णा नौमी के दिन हुआ है। अयोध्या के अंदर ही ये कल्याणक हुए हैं। अब हम आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 17। चैत्र कृष्णे नवम्याम ही स्वयंभूर दीक्षितो भवत् फाल्गुने शित पक्षे भू देकादश्याम स्तु सुकेवली। इस ये भी अनुष्ठ छंद है। इस श्लोक के माध्यम से कहा गया कि चैत्र कृष्णा नवमी के ही दिन स्वयंभू भगवान माता पिता तो निमित्त रहे, लेकिन वे स्वयंभू इसलिए कहलाए कि उन्होंने जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया, स्वयं ही दीक्षा धारण की और वे स्वयंभू कहलाए, स्वयं ही सारे ज्ञान के धारी थे, उन्हें कोई पढ़ाने वाला कोई गुरु नहीं था। ऐसे स्वयंभू भगवान चैत्र कृष्णा नवमी के दिन ही दीक्षित हुए, दीक्षितो भवत्, दीक्षा उन्होंने धारण की। और फाल्गुने शित पक्षे भू, जब इसका विग्रह करेंगे फाल्गुने असित पक्षे भू भू अभिरद एकादश्याम सुकेवली, भूत एकादश्याम सुकेवली, तो फाल्गुने असित माने कृष्ण पक्ष, सित माने शुक्ल पक्ष और असित माने कृष्ण पक्ष, तो फाल्गुन कृष्णा एकादशी में सुकेवली केवल ज्ञान को प्राप्त किया, अर्थात केवल ज्ञान कल्याणक की तिथि फाल्गुन कृष्णा एकादशी। हमने इसीलिए शुरू किया कि आप इन भगवंतों की कल्याणकों की तिथि को अच्छे से याद कर सके और उनके जीवन को आप अपने जीवन के अंदर उतार सके। तो इस श्लोक के अंदर दीक्षा कल्याणक की तिथि और केवल ज्ञान कल्याणक की तिथि बताई है। अब आगे 18 नंबर के श्लोक में माघ कृष्णे चतुर्दश्याम कैलाशे गिरिमस्तके निर्वृतिम परमाम लब्ध्वा सिद्धिकांता पतिर्वभौ। माघ कृष्णा चतुर्दशी चतुर्दश्याम चतुर्दशी तिथि पर कैलाशे गिरिमस्तके, कैलाश पर्वत के मस्तक पर यानी कैलाश पर्वत का मस्तक जो अष्टापद, वहां जाकर के निर्वृतिम, निर्वृतिम माने निर्वाण को, परमाम जो उत्कृष्ट निर्वाण, इससे उत्कृष्ट कोई चीज नहीं है, संसार की सबसे उत्कृष्ट वस्तु सिद्ध गति निर्वाण गति निर्वाण पद है, उस परम उत्कृष्ट निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करके, लब्ध्वा माने प्राप्त करके सिद्धि कांता पतिर बभौ, सिद्धि कांता माने सिद्धि रूपी कन्या के कांता के पति हो गए, स्वामी हो गए, अर्थात सिद्धि कांता ने उनको वरण कर लिया, मतलब सिद्ध पद को प्राप्त। यह अलंकार है, कोई स्त्री नहीं है, कोई स्थान नहीं है सिद्धि शिला के अतिरिक्त, कोई महल नहीं है, लेकिन भगवान की स्तुति में अलंकारों का प्रयोग करके आपको जानना है कि जैसे संसार के अंदर स्त्री पात्र को एक सौंदर्य की खान माना गया, ऐसे देखो मोक्ष भी प्राप्त कर लिया भगवान ने तो भी वहां उपमा किसकी दे रहे हैं, सिद्धि कांता एक महिला की उपमा दे रहे हैं। यानी कि हर जगह वरण अगर होता है तो महिला के साथ वरण होता है, तो भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया तो उसकी उपमा दी सिद्धि रूपी कांता स्त्री का वरण कर लिया। तो आप इस श्लोक के अंदर जानना कि भगवान के निर्वाण कल्याणक की तिथि बताई और निर्वाण कल्याणक का स्थान, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। यूं तो जैन शासन का नियम है हर तीर्थंकर भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाले प्रत्येक तीर्थंकर अयोध्या में जन्मेंगे और समय शिखर से मोक्ष जाएंगे। ये दो ही शाश्वत तीर्थ हैं। लेकिन हुंडाव सर्पणी काल में सर्वप्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने मोक्ष जो है कैलाश पर्वत से प्राप्त कर लिया। ये एक हुंडाव सर्पणी काल का दोष रहा। जन्म जरूर उन्होंने अयोध्या में प्राप्त किया, लेकिन 5 तीर्थंकरों के अतिरिक्त 19 तीर्थंकरों ने अन्य स्थानों से जन्म भी ले लिया। तो हुंडाव सर्पणी काल के दोष के कारण भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। इस श्लोक में मोक्ष का स्थान और मोक्ष की तिथि बताई गई। आगे चलते हैं। आयुश्चतुरशीत्यां लक्ष पूर्व प्रमाण कहा इक्ष्वाकुवंश भास्वान्यो पुरु देवो पुना तुमे। पुरु देवो पुना तुमे, भगवान का एक नाम है पुरु देव। मैं पुना तु, हे पुरु देव भगवान आप मुझे पवित्र करें। कैसे है वे भगवान? आयु चतु अशीत्यात्मा, कहा कि आयु जो है 84 के साथ में, फिर कहा लक्ष्य पूर्वक प्रमाण का। 80 माने 80, लक्ष्य माने लाख, और 84 लाख पूर्व प्रमाण भगवान की आयु थी। ध्यान रखना, तो आप एक कॉपी बना लीजिए और इन मुख्य मुख्य बातों को उसमें लिखते जाइए। और वैसे हमने आपको ये 24 तीर्थंकर पुस्तक भी भेजी है, जिसके अंदर उत्तर पुराण के आधार से सारे तीर्थंकर भगवंतों की चरित्र बहुत ही संक्षिप्त में दिए गए हैं। और छंद को लेकर और इस पुस्तक के परिचय को लेकर ही जो आपके पास कल्याण कल्प तरु ज्ञान पहेली भेजी गई है उसको भर करके अब कल तक समय है। बस कल शाम तक आपको ज्ञानांजलि ऐप में उसको भर करके भेज देना है। परसों उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद 17 तारीख को हम दूसरी पहेली देंगे आपको अजितनाथ भगवान से संबंधित। तो इसलिए आपको ध्यान रखना आवश्यक है भगवान के सारे गुणों के बारे में, भगवान के पंचकल्याण आदि तिथियों के बारे में। इतना जरूर ध्यान रखना कि कोई भी पहेली को व्हाट्सएप पर ना भेजें, क्योंकि ज्ञानांजलि ऐप ही केवल दिया गया है जिसके अंदर आपको पहेली डिस्प्ले की गई है। 300 लोगों ने लगभग पहेली के उत्तर भर करके भेज दिए हैं, और व्हाट्सएप के जो उत्तर रहेंगे वो मान्य नहीं होंगे। इसलिए ज्ञानांजलि ऐप को ही आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और चाहे गूगल स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से आपको ज्ञानांजलि ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपके एंड्रॉइड फोन या आईफोन में डाउनलोड करके पुनः आप इस ज्ञानांजलि ऐप के अंदर कल्याण कल्प तरु ज्ञान पहेली, जो पहली पहेली है, उसका उत्तर भेजना। और जो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप आज, अगर कोई नए लोग हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज तक फिर से आप व्हाट्सएप नंबर जान करके और उससे जानकारी प्राप्त करके पहेली को मंगा भी सकते हैं। लेकिन पहेली ज्ञानांजलि ऐप पर ही डिस्प्ले की गई है। तो व्हाट्सएप नंबर आप कोई जानकारी के लिए सुन लीजिएगा, 7318237 01, जो चैट बॉक्स के अंदर भी डाला गया है नंबर, इसी नंबर पर आपको संपर्क करना है। अब हम आगे के श्लोक में चलते हैं। द्विसहस्र करो तुंगो वृषभो वृषलांछन जिया त्रैलोक्य नाथो सो स्याद्वादामृत शासना। अनुष्टुप छंद का ही ये श्लोक है। द्विसहस्र करो तुंगो, भगवान के शरीर की ऊंचाई बता रही है। द्वि माने दो, सहस्र माने हजार, 2000 कर माने हाथ, उत्तुंग माने ऊंचाई। 2000 हाथ की ऊंचाई का आपका शरीर है, माने आप 2000 हाथ ऊंचे। 500 धनुष कहा गया, तो एक धनुष में 4 हाथ, इसलिए 2000 हाथ ऊंचे भगवान ऋषभदेव का शरीर था। वृषभो वृषलांछनः, वृषभ भगवान आपका नाम, और वृषलांछनः बताया कि भगवान ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? बैल। बैल है। और ऐसे भगवान ऋषभदेव त्रैलोक के नाथो असौ जी यार, त्रैलोक तीनों लोकों के नाथ ऐसे भगवान ऋषभदेव जयशील हो, स्याद्वादामृत शासना, और उनका स्याद्वाद रूपी शासन जो है अमृत शासन के नाम से जो कहा गया है, ऐसा स्याद्वाद शासन अमृत शासन ये जयशील रहे, भगवान ऋषभदेव जयशील रहे। इसके साथ में इस भगवान ऋषभदेव की स्तुति का समापन किया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर के छंद में 20 श्लोक बताए। अब 21वें श्लोक में 19 अक्षरी छंद का प्रयोग किया है, जिसका नाम है शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल माने सिंह, विक्रीडित माने चलना, जैसे शेर चलता है पग बढ़ाते हुए, ऐसे उससे शार्दूल विक्रीडित छंद को पढ़ते हैं। यह 19 अक्षरी छंद है। इसका लक्षण इसमें दिया है कि 19 अक्षरी छंद में आगे लक्षण दिया जाएगा। इसको पढ़ते हैं, कई प्रकार से भी पढ़ा जाता है। यह क्रोधादि रिपुन विजित्य सहसा स्वात्मोत्थ सौख्यामृतम पायम पाय महर्निशंभवया स्वात्मानमुद्धृत्य वै त्रैलोक्याग्रपदे धृतश्च निवस तद्याप्यनन्तावधिम् विश्या श्री वृषभो सहिष भगवान मे ज्ञानमत्तेई श्रिय। यह सहसा क्रोधादि पूर्ण, यानी जब भगवान ध्यान में लीन हो गए तो सहसा ही एक दिन क्या होता है कि क्रोध आदि शत्रुओं को जीत विजित्य जीत करके सहसा उन्होंने स्वात्मोत्थ सौख्यामृतम जब जीत लिया कर्मों को, तो क्या हुआ, अपनी आत्मा से उत्पन्न हुए सुख रूपी अमृत का पान करने लग गए। पायम पायने बार बार उसका हमेशा पी पी करके, और सुख रूपी आत्मा से उत्पन्न सुख रूपी अमृत को बार बार पी करके, माने अब उनको कुछ भी ना जल पीना शेष रहा है, ना कोई जूस पीना, ना दूध पीना, अब केवल उन्हें क्या पीना, आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख रूपी अमृत को पी पी करके क्या करते हैं, फिर भाव भयात स्वात्मानं उद्धृत्य वै, संसार के भय से अपने आत्मा को उद्धृत्य निकाल करके त्रैलोक्याग्रपदे तीन लोक के अग्रभाग पर, तीन लोक के अग्रभाग पर क्या है, सिद्ध शिला है ना, सामने से अर्धचंद्राकार दिखती है और वैसे कटोरे के समान, उत्तान कटोरे के समान, उत्तान छत्र के समान सिद्ध शिला मानी गई है, जो सामने से अर्धचंद्र की तरह दिखती है। और जब आपको देखना हो तो हस्तिनापुर में निर्मित तीन लोक के ऊपर जा करके देखें, तनुवार तोले के अंदर ही सिद्ध शिला है, ये जरूर ध्यान रखना। कुछ लोग तीन लोक के ऊपर भगवान को बिठा देते, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तीन लोक के ऊपर अलोकाकाश है, अलोकाकाश में धर्मास्तिकाय अभावात, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से उसके ऊपर कोई भी जा नहीं सकते, इसलिए भगवान की सिद्ध शिला तीन लोक के अंदर तनुवार तोले का स्पर्श करते हुए है। अयोध्या के अंदर भी बहुत सुंदर तीन लोक की रचना बनी है, अच्छे से देखी जा करके, तो वहां पर तीन लोक के अग्रभाग पर यानी सिद्ध शिला पर धृता धारण कर दिया, जाके आपको वहां धर दिया, पहुंचा दिया सुख के अंदर, च माने और अनंतावधि अनंत काल से अद्यापि आज तक भी वहीं पर आप निवास कर रहे हैं, क्योंकि एक बार मोक्ष जाने के बाद जैन शासन में कोई भी मुक्त जीव संसार में वापस नहीं आते, यही तो उनकी विशेषता है। अगर वापस आने लग गए तो हम सब संसारी जीवों की तरह पुनः पुनः जन्म लेते रहेंगे, और पुनः पुनः जन्म लेते रहे तो मोक्ष कहाँ प्राप्त कर पाए, वो मुक्त जीव वो सिद्ध जीव नहीं कहलाएंगे। संसारी और मुक्त दो ही तरह के हैं जीव, संसार में रहने वाले संसारी और मोक्ष में जाने वाले मुक्त जीव, वो वहां से कभी भी वापिस नहीं आते। आज तक भी वही निवास कर रहे हैं और अनंत काल तक वही निवास करेंगे। सा एष वृषभ भगवान, ऐसे वो वृषभ भगवान, आदिनाथ भगवान, पुरुदेव भगवान, जगत ब्रह्मा भगवान, प्रजापति भगवान, उनके जितने नाम कहे उतने कम हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान में ज्ञान मत्ते श्रियं दिश्याम, ज्ञानमती माता ही कहती हैं कि हे भगवान, मैंने जो स्तुति की है बस उसका फल मुझे क्या मिल जाए, कि मुझ ज्ञानमती के लिए श्रियं असली श्री असली लक्ष्मी मुक्ति रूपी, लक्ष्मी मुक्ति रूपी संपत्ति दिश्यात माने मुझे प्रदान कर दे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई हाथी घोड़ा बंगला नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए, मेरी आत्मा आपके समान ही मोक्ष को प्राप्त कर ले, इसलिए मेरा ज्ञानमती नाम सार्थक हो जाए और केवल ज्ञान में वो परिणत हो जाए। और जब केवल ज्ञान में परिणत हो जाएगी तो मोक्ष तो अपने आप मिल ही गए। ऐसे मुझ ज्ञानमती के लिए मुक्ति संपदा को आप दिश्यात्मा ने प्रदान कर दे। अर्थात आप ये जाने कि जिन्होंने क्रोध आदि भाव कर्मों को शीघ्र ही जीत लिया और नित्य ही आत्मा से उत्पन्न सुख रूपी अमृत को जो बार बार पीकर संसार के सुख से अपने आप को निकाल करके तीन लोक के मस्तक पर विराजमान हो गए, वहां आज तक भी, वह अनंत अनंत काल तक उसी प्रकार से वहां विराजमान रहेंगे। ऐसे भी आदिनाथ भगवान मुझ ज्ञानमती के लिए मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करें। तो ज्ञानमती माते ने कितनी अच्छी भावना उठाई है। आप भगवान के सामने जाते हैं तो क्या कहते हैं, हे भगवान मेरा पुत्र सुखी रहे, उसकी नौकरी लग जाए, मेरे पास संपत्ति आ जाए, मेरे कष्ट दूर हो जाए। लेकिन अपना असली लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भगवान मुझे मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त हो जाए। उसके बीच में तो भूसे की तरह से दूसरी लक्ष्मी तो मिल ही जाएंगी। ऐसे मोक्ष लक्ष्मी की याचना के साथ इस आदिनाथ भगवान को, ऋषभदेव भगवान को नमस्कार करके और इस स्तुति को परिपूर्ण किया जा रहा है। कल हम अजितनाथ भगवान की स्तुति आपको पढ़ाएंगे, उसके छंदों के बारे में बताएंगे। अब एक मेरा प्रश्न है, ध्यान से सुनिए और देखो, चैट बॉक्स में केवल यहाँ के अलावा सबकी चैटिंग बंद कर दें, और जो लिखेंगे तो वो कैसे आएगा फिर? हाँ, आपको लिखना है। चलिए हम पूछते हैं, भगवान ऋषभदेव की इस स्तुति के अंदर चार अक्षरी छंद कितने प्रयोग किए गए, यानी चार अक्षरी छंद इसमें कितने हैं, संख्या आपको लिख करके भेजना है, क्योंकि एक एक अक्षरी छंद को भी माता जी ने कई बार प्रयोग किया, तो चार अक्षरी छंद का कितनी बार इस स्तुति के अंदर प्रयोग किया गया है ये आपको लिख करके भेजना है। सबसे पहले जिसका नाम आएगा उसको पुरस्कार भेजा जाएगा और वो अपना पेटीएम नंबर भी जूम के चैट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। हाँ बहन जी, बताइएगा कि इनका नाम आया है और क्या है, तो उत्तर सही है या गलत। सही उत्तर होगा तो उनका नाम घोषित करके और हम उनको सारिका बिलाला ने सबसे पहले भेजा है 6 बार 4 अक्षरी, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दें। देखिए 6 बार 4 अक्षरी छंद का प्रयोग किया गया, कन्या छंद, व्रीड़ा छंद, लासिनी छंद, सुमुखी छंद, सुमति छंद और समृद्धि छंद। ऐसे 4 अक्षरी छंद 6 छंदों का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है सारिका बिलाला जी ने। इनको अयोध्या से पुरस्कार दिया जाएगा। सारिका जी, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। इनका मन हमेशा लगा रहता है कि खूब अच्छे से रत्नत्रय महोत्सव हो। अब आपको एक दूसरी और सूचना करनी है, घर घर हो रत्नत्रय महोत्सव, ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव। तो 17 तारीख से आप लोगों को नाम देना है कि हम प्रतिदिन 3 लोगों के घर को डिस्प्ले करेंगे, दिखाएंगे, जो अपने घरों को अच्छे से सजाएंगे, और उसमें लिखेंगे घर घर हो रत्नत्रय महोत्सव, ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव। प्रतिदिन 3 लोग, केवल तीन लोगों को जिनके तीन नाम आएंगे, जो पहले 17 तारीख को अपने घर सजाएंगे, हम 2 मिनट उनको देंगे अपने घर को अच्छा सजाने के लिए, चाहे ज्ञानमती माता की पुस्तकों को सजाएं या फिर मंगल कलश लगा करके, या ज्ञानमती माता के लिए जो कुछ आप चाहते हैं वह रत्नत्रय महोत्सव में अच्छे से सजा करके, चाहे रंगोली बनाए, चाहे जो भी अपना कॉन्सेप्ट तैयार करके और अच्छे से सजाएंगे, ऐसे 3 लोगों को 17 तारीख को हम दिखाएंगे 2-3 मिनट तक, जो आप अगर 1 मिनट बोलना भी चाहेंगी पूज्य माता के लिए विनयांजलि अर्पित करना चाहेंगे, तो ऐसे 3 लोगों के घरों को डिस्प्ले किया जाएगा सजे हुए घर, ताकि ये पता चले कि हमने आज से ही ज्ञानमती माता जी का ये 108 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव, शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव भी कहें हम इसे, तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। तो आप में से जिनके नाम आएंगे कल हम उन 3 लोगों के नाम घोषित करेंगे कि 17 तारीख को कौन से 3 लोग अपने घर को अच्छे से सजा करके और पूज्य माता जी के लिए अर्घ भी चढ़वाएंगे हम उनसे, और आप अपनी अपना डिस्प्ले भी देंगे कि किस तरह से आप क्या कहना चाहती हैं और ज्ञानमती माता के चरणों में विनयांजलि समर्पित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 3-4 दिनों के अंदर एक स्तुति को केवल पढ़ाया आपको, लेकिन आगे बड़े छंद आ जाएंगे और पुस्तकें भी आपके पास पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें एक अक्षर से लेकर और आपने 8 अक्षर तक के छंद पढ़ लिए, और उपसंहार इसका 19 अक्षरी छंद से किया गया, तो ये छंद शास्त्र और ये स्तुति, ये स्तोत्र, भगवान का चरित्र, भगवान का परिचय, ज्ञानमती माता की कृति आप लोगों तक पहुंच रही है, कि आपके लिए खूब मंगलमयी हो, सबके लिए मंगल आशीर्वाद।